एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने आते ही काफी सनसनी मचा दी, द वुमन इन मी। ये आवाज है ब्रिटनी स्पीयर्स की। नाम तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। प्रिंसेस ऑफ पॉप, एक ग्लोबल फिनोमिनन जिनकी जिंदगी, उनका संगीत, उनकी शोहरत, उनके रिश्ते, मतलब सब कुछ दशकों तक सुर्खियों में रहा।
हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किताब जैसा आपने कहा सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये 13 साल की जो उन पर कानूनी निगरानी रही, मतलब वो कंजर्वेटरशिप, उसके बाद अपनी कहानी, अपना सच दुनिया के सामने रखने का एक बहुत पावरफुल दस्तावेज है। हमने उन्हें स्टेज पर देखा, टैबलॉइज में पढ़ा, पर वो जो पर्दे के पीछे की सच्चाई थी, उस कानूनी जकड़न की जो घुटन की, वो शायद ही कोई समझ पाया। ये किताब उसी चुप्पी को तोड़ती है एक तरह से।
तो आज की इस बातचीत में हम यही कोशिश करेंगे, इस किताब के जरिए ब्रिटनी की कहानी को समझने की, उनके शुरुआती दिनों से लेकर वो स्टारडम की ऊंचाइयां, फिर वो मुश्किल भरे साल और आखिर में वो आजादी, और ये भी कि उनकी कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है, है ना?
बिल्कुल, खासतौर पे जब हम फेम, कंट्रोल, मिजोजिनी यानी महिला द्वेष और पर्सनल फ्रीडम जैसे मुद्दों पर सोचते हैं।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर कहानी की शुरुआत होती है लुइजियाना के एक छोटे से शहर केंटवुड से। उनका बचपन कैसा था वहाँ, किताब क्या बताती है?
किताब में ना एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है, मतलब प्यार था, टैलेंट तो जबरदस्त था गाने और नाचने का, लेकिन परिवार में ना काफी टेंशन भी थी।
अच्छा, किस तरह की टेंशन?
उन्होंने जिक्र किया है अपनी दादी की दुखद आत्महत्या का, शायद वो परिवार में मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक पहलू था जिस पर ध्यान नहीं गया। फिर पिता जेमी, उनका शराब से संघर्ष, उनका गुस्सा, घर में एक डर का माहौल रहता था। और माँ लिन, वो काफी एम्बिशियस थी, उन्हें ब्रिटनी के टैलेंट में गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखता था।
यानी छोटी उम्र से ही एक प्रेशर था परफॉर्म करने का, उम्मीदों पर खरा उतरने का।
हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए वो परफॉर्मेंस, वो गाना नाचना एक तरह की पनाहगाह भी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती थी, पावरफुल महसूस करती थी। लेकिन हाँ, दूसरों को खुश करने का पैटर्न भी शायद यहीं से शुरू हुआ।
फिर आया वो मिक्की माउस क्लब वाला दौर, जहां जस्टिन टिम्बरलेक और क्रिस्टीना एग्विलेरा जैसे और भी लोग थे। वो कैसा एक्सपीरियंस था उनके लिए?
वो एक तरह की क्या कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था। बहुत अनुशासन, घंटों की मेहनत और हमेशा परफेक्ट दिखने का जबरदस्त दबाव। इसी चक्कर में उनकी जो नॉर्मल स्कूलिंग थी वो पीछे छूट गई। उनका बचपन एक तरह से स्टेज पर ही बीता, और जब वो शो खत्म करके केंटवुड लौटी तो उन्हें वो नॉर्मल टीनेज लाइफ बहुत अजीब लगने लगी। एक बेचैनी सी थी जो उन्हें फिर न्यूयॉर्क ले गई।
न्यूयॉर्क में फिर वो बड़ा ब्रेक मिला जाइव रिकॉर्ड्स वाला।
हाँ, वहीं उन्हें रिकॉर्ड डील मिली और यहीं से ब्रिटनी स्पीयर्स ब्रांड बनना शुरू हुआ। किताब इस बात पर जोर देती है कि उनकी इमेज बनाने वाले ज्यादातर मर्द थे, एक ऐसी इमेज जिसमें इनोसेंस और एक उभरती हुई सेक्सुअलिटी का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर था।
हाँ, उन्होंने लिखा भी है कुछ ऐसा कि इमेज किसी और ने बनाई पर जीना उन्हें पड़ा।
बिल्कुल, वो बोझ उन पर था।
और फिर आया 1998 और बेबी वन मोर टाइम, मतलब रातों रात दुनिया बदल गई होगी उनकी तो।
अरे बिल्कुल, वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक कल्चरल मोमेंट था। किताब में वो शुरुआती एक्साइटमेंट का जिक्र करती हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताती हैं कि कैसे पलक झपकते ही उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई।
हाँ, वो तो होता ही है इतनी फेम के साथ।
पर ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी आर्ट में कितना इन्वॉल्व थी, कोरियोग्राफी, वीडियो के कॉन्सेप्ट्स। ये जो एक इमेज थी कि वो सिर्फ एक चेहरा है, किताब उसे चैलेंज करती है।
लेकिन इस जबरदस्त शोहरत के साथ साथ मीडिया का रवैया भी शायद ज्यादा तीखा हो गया।
यकीनन, पैपराजी का पीछा करना तो जैसे एक जुनून बन गया था। उनकी वर्जिनिटी से लेकर उनके शरीर तक हर चीज पर बेहद भद्दे और अक्सर महिला विरोधी सवाल होते थे।
वो दौर याद है मुझे भी।
जस्टिन टिम्बरलेक के साथ उनका रिश्ता भी इसी मीडिया सर्कस का हिस्सा बन गया, और जब वो रिश्ता टूटा तो कहानी पूरी तरह उनके हाथ से निकल गई। मतलब वो एक ऐसे मुकाम पर थीं जहां सक्सेस की कीमत उनकी अपनी आवाज, उनकी अपनी एजेंसी बनती जा रही थी।
और फिर वो मुश्किल दौर आया 2007-08 वाला, जिसे मीडिया ने मेल्टडाउन का नाम दिया और जो आखिर में कंजर्वेटरशिप तक ले गया। किताब इस पीरियड को कैसे देखती है?
किताब इसे मेल्टडाउन से ज्यादा एक गहरे मानवीय संकट की तरह पेश करती है।
बिल्कुल।
देखिए, टिम्बरलेक से ब्रेकअप का जो सदमा था, जिससे वो शायद कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई।
हाँ।
फिर केविन फेडरलाइन से शादी, दो बेटों का जन्म, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिससे वो जूझ रही थी, ये सब एक साथ आया। और ऊपर से मीडिया का वो लगातार शिकारी जैसा रवैया, वो हर पल कैमरे की नजर में थी।
और वो तस्वीरें, खासकर वो सिर मुंडवाने वाली घटना, वो तो बहुत वायरल हुई थी।
हाँ, और किताब उन घटनाओं को पागलपन की तरह नहीं देखती, वो उन्हें गहरे दुख, गुस्से और एक तरह से हेल्प के लिए पुकार के तौर पर देखती है। सिर मुंडवाने को वो एक विद्रोह का हताश कदम बताती हैं।
विद्रोह?
हाँ, जैसे उन्होंने लिखा भी है, मुझे इतना देखा परखा गया था कि मैं थक गई थी। सिर मुंडवाना दुनिया को कहने का एक तरीका था, भाड़ में जाओ सब। वो उस सेक्सुअल इमेज का एक तरह से हिंसक खंडन था जो उन पर थोपी गई थी, अपने शरीर पर कंट्रोल वापस पाने की एक दर्दनाक कोशिश। लेकिन दुनिया ने, और शायद सिस्टम ने भी, इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया।
और इसी बैकग्राउंड में फिर 2008 में वो कंजर्वेटरशिप लगा दी गई पूरे 13 साल के लिए।
हाँ, और किताब के मुताबिक वो 13 साल किसी गुलामी से कम नहीं थे। उनके पैसे, उनका करियर, उनकी पर्सनल लाइफ, किससे मिलेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी, मतलब हर छोटी बड़ी चीज पर कंट्रोल था।
यहाँ तक कि उनके अपने शरीर पर भी, जैसे आपने बताया।
जी हाँ, वो जबरदस्ती आईओडी, इंट्रायूट्रीन डिवाइस लगाए जाने का जिक्र करती हैं। वो और बच्चे चाहती थीं, उसे हटवाना चाहती थीं, पर उन्हें इजाज़त नहीं थी। वो खुद को चाइल्ड रोबोट कहती हैं। सोचिए, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं, करोड़ों कमा रही हैं, लेकिन अपनी मर्जी से एक कप कॉफी खरीदने या अपनी कार ड्राइव करने तक की आज़ादी नहीं है।
बाप रे।
और पिता जेमी, उनका कंट्रोल बेहद सख्त और सजा देने वाला बताया गया है किताब में।
13 साल, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस कैद से बाहर निकलने की लड़ाई कैसी रही?
किताब में ना छोटे छोटे प्रतिरोध के पलों का जिक्र है, जैसे कभी उन्होंने काम करने से मना कर दिया जिससे उनके कंट्रोलर्स हैरान रह गए। फिर धीरे धीरे उन्हें हैशटैग फ्री ब्रिटनी मूवमेंट के बारे में पता चला, उससे एक उम्मीद जगी।
हाँ, वो मूवमेंट काफी बड़ा हो गया था।
बिल्कुल। और फिर आया जून 2021 का वो दिन जब उन्होंने कोर्ट में फोन पर अपनी गवाही दी। वो एक बहुत ही डरावना लेकिन हिम्मत वाला पल था, उसी ने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 2021 में आखिरकार उन्हें आज़ादी मिली, लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर एंडिंग नहीं है। ये दशकों के ट्रॉमा से उभरने की एक बहुत ही कच्ची, ईमानदार और अभी भी जारी प्रक्रिया है।
इस पूरी कहानी को अगर देखें तो ब्रिटनी की कोर वैल्यूज, उनके जीवन को देखने का नजरिया, वो क्या लगता है किस चीज ने उन्हें इतने सालों तक चलाए रख?
मुझे लगता है सबसे सेंट्रल वैल्यू है पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और उनके लिए ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बहुत ठोस चीजें हैं। अपनी कार की चाबियां हाथ में होना, अपनी पसंद की कॉफी खुद चुन पाना, अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर पाना,
छोटी छोटी चीजें जो हम ग्रांटेड लेते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि ये सब उनसे छीन लिया गया था, इसलिए इनकी कीमत वो सबसे ज्यादा समझती हैं। ये एक पैराडॉक्स है कि दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी इन बेसिक आज़ादियों के बिना बेकार लग सकती है।
और कला, संगीत और डांस का क्या रोल रहा?
वो तो हमेशा से उनके लिए एक तरह का एस्केप रूट रहा है, खुद को एक्सप्रेस करने का और शायद एक तरह की स्पिरिचुअल रिलीज पाने का जरिया। मंच ही वो जगह थी जहां वो शायद सबसे ज्यादा खुद होती थी, कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही था। किताब ये भी दिखाती है कि कैसे समय के साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि मिजोजिनी, यानी महिला द्वेष, ने उनकी पब्लिक इमेज बनाने और फिर उन पर कंट्रोल बनाए रखने में कितना बड़ा रोल निभाया।
और उनकी मोटिवेशंस, वो कैसे बदली वक्त के साथ?
शुरू में शायद कैंटफुट से निकलना, पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना, खासकर माँ की, और पिता की मांगे मानना, ये बड़ी प्रेरणाएं थीं। फिर आया आर्ट के लिए उनका अपना पैशन, फैन से मिला प्यार।
और फिर बच्चे?
हाँ, जब उनके बेटे हुए तो उनकी सेफ्टी, उनके साथ रहना, ये उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई। और विडंबना देखिए, कंजर्वेटरशिप के दौरान इसी डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्हें डराया गया कि अगर वो सहयोग नहीं करेंगी तो बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा।
ओ, ये तो बहुत क्रूर है।
बिल्कुल। और आखिर में सबसे बड़ी प्रेरणा बनी आज़ादी पाने की इच्छा और अपना सच, अपनी कहानी दुनिया को बताने की इच्छा। ये किताब उसी का नतीजा है।
अगर हम उनकी जिंदगी के 3 सबसे अहम मोड़ या टर्निंग पॉइंट्स की बात करें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
पहला तो मैं कहूंगा जस्टिन टिम्बरलेक से ब्रेकअप और उसके बाद जो हुआ 2002।
हाँ, वो क्राइमिया रिवर वाला मामला।
बिल्कुल, टिम्बरलेक ने वो गाना और वीडियो रिलीज किया जिसमें साफ इशारा था कि ब्रिटनी ने उन्हें धोखा दिया। मीडिया ने फौरन टिम्बरलेक का साथ दिया और ब्रिटनी विलन बन गई। लेकिन किताब में ब्रिटनी एक और बहुत दर्दनाक बात बताती हैं,
क्या?
कि उस रिश्ते के दौरान उनका गर्भपात हुआ था, क्योंकि जस्टिन उस वक्त पता बनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि वो लोग बहुत यंग हैं।
ये बात तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी।
हाँ, और ये शायद पहली बार था जब उन्होंने अपनी कहानी का कंट्रोल पूरी तरह खो दिया। एक तरफ पब्लिक शेमिंग हो रही थी, दूसरी तरफ वो गर्भपात के निजी दुख से अकेले गुजर रही थीं। इसने उन्हें बहुत अकेला कर दिया और इंडस्ट्री पर उनका भरोसा टूट गया। ये दिखाता है कि कैसे अक्सर मर्द की कहानी को तरजीह दी जाती है। इसने उन्हें सिखाया कि फेम कितनी क्रूर हो सकती है।
ये वाकई एक बड़ा मोड़ था। दूसरा, जाहिर है 2007-08 का वो मुश्किल दौर।
हाँ, मैं उसमें से सिर मुंडवाने वाली घटना 2007 को चुनूंगा।
ओके।
बच्चों की कस्टडी की लड़ाई का तनाव, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पैपराजी का वो हर पल का पीछा, इस सब के बीच उन्होंने सलून में जाकर अपना सिर मुंडवा लिया। दुनिया ने कहा, देखो ये पागल हो गई है। लेकिन किताब इसे कंट्रोल के खिलाफ एक डेस्परेट एक्ट ऑफ रिबेलियन बताती है। अपने शरीर पर, अपनी इमेज पर वापस कंट्रोल पाने की एक कोशिश, भले ही वो कितनी भी अजीब लगे। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि वो उनकी बनाई इमेज से थक चुकी हैं।
लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ।
बिल्कुल, ये उनकी तरफ से एक बयान था, पर इसे उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। उनके दर्द और गुस्से को पागलपन का टैग दे दिया गया और इसी घटना को कंजर्वेटरशिप थोपने के लिए एक बड़े सबूत के तरह पेश किया गया। ये वो पल था जब वो अपनी इमेज और शरीर पर कंट्रोल की लड़ाई बुरी तरह हार गईं।
और तीसरा और शायद सबसे अहम मोड़,
वो था कोर्ट में उनकी गवाही, जून 2021।
हाँ, वो तो गेम चेंजर था।
बिल्कुल, सालों की खामोशी के बाद, कानूनी बंदिशों के बावजूद, उन्होंने फोन पर जज के सामने करीब 24 मिनट तक अपनी बात रखी। वो एक बहुत ही इमोशनल विस्फोटक गवाही थी। उन्होंने कंजर्वेटरशिप के तहत हुए कथित दुर्व्यवहार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जबरदस्ती काम करवाना, मर्जी के खिलाफ दवाएं देना, शादी करने या IUD हटवाने से रोकना, सब कुछ।
उस गवाही ने तो दुनिया को हिला दिया था।
हाँ, और यही वो क्षण था जब उन्होंने पब्लिकली और सबसे पावरफुल तरीके से अपनी आवाज वापस पाई। ये सालों के दबे हुए दर्द, गुस्से और हिम्मत का नतीजा था। इसी गवाही ने कंजर्वेटरशिप के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। इसने #FreeBritney मूवमेंट को जबरदस्त ताकत दी, पब्लिक ओपिनियन बदला और कानूनी प्रक्रिया को तेज किया। ये विक्टिम से फाइटर बनने का मोमेंट था।
ब्रिटनी की कहानी अपने आप में तो बहुत असाधारण है, जाहिर है, लेकिन क्या इसमें हम जैसे आम लोगों के लिए भी कुछ सबक हैं, कुछ सीखने वाली बातें?
अरे बहुत सारी हैं। पहले बात तो ये कि ये कहानी दिखाती है कि एक्सट्रीम फेम की ह्यूमन कॉस्ट क्या हो सकती है, खासकर जब आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सेलिब्रिटीज को कैसे देखते हैं। दूसरी बात, ये फैमिली रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करती है। कैसे वही लोग जो हमें प्यार और सुरक्षा देने वाले होते हैं, वही कभी कभी कंट्रोल और शोषण का जरिया भी बन सकते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि परिवार हमेशा सेफ हेवन नहीं होता।
और वो पर्सनल फ्रीडम वाली बात भी, जिसे हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उतना महत्व नहीं देते।
बिल्कुल, ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि पर्सनल एजेंसी, मतलब अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले खुद लेने की क्षमता, कितनी बेसिक ह्यूमन नीड है। जैसा हमने पहले भी कहा, पैसा शोहरत सब बेकार है इसके बिना। ब्रिटनी के पास सब कुछ था सिवाय अपनी मर्जी के।
सही बात है।
और साथ ही ये मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को लेकर हमारे समाज के रवैये पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। कैसे किसी के दर्द को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है, सहानुभूति की जगह सेंसेशनल हेडलाइंस ढूंढी जाती हैं।
उनकी रेजिलियंस, मतलब 13 साल तक उम्मीद बनाए रखना, वो भी कमाल का है।
हाँ, वो तो है, लेकिन किताब शायद ये भी सिखाती है कि असली रेजिलियंस सिर्फ चुपचाप सहते जाना नहीं है। असली ताकत शायद उस पॉइंट पर पहुंचने में है जब आप लड़ने का फैसला करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, भले ही इसमें सालों लग जाएं। उनकी आजादी चुप रहने से नहीं, बोलने से आई।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर श्रोताओं के लिए 3 मुख्य बातें या टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे?
पहली एक भावनात्मक सीख जो मुझे लगती है, शायद ब्रिटनी की कहानी का सबसे बड़ा दुख पैसा या शोहरत खोना नहीं, बल्कि समय का खो जाना है। वो 13 साल जिनमें जिंदगी की वो छोटी छोटी नॉर्मल खुशियां उनसे छीन ली गई। अपनी कार चलाना, अपनी मर्जी से माँ बनना, दोस्तों से मिलना, अपनी पसंद की कॉफी पीना। किताब में उस खोए हुए समय का अफसोस बार बार झलकता है।
हाँ।
ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। ये हमें याद दिलाता है कि समय वाकई कितनी कीमती चीज है।
ये बात तो सच में दिल को छूती है। दूसरी चीज तो क्या होगी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर?
एक बौद्धिक सीख। ये किताब उस कानूनी व्यवस्था पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है जिसने इस तरह की सिविल डेथ को मुमकिन बनाया। मतलब कंजर्वेटरशिप जैसे कानून जो शायद कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बने होंगे, कैसे एक एबल वर्किंग अडल्ट को कंट्रोल करने, उसे चुप कराने और उसका शोषण करने का हथियार बन सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी लीगल सिस्टम्स असल में किसकी सेवा करती हैं और पावर के ऐसे अब्यूज को कैसे रोका जा सकता है। ये बड़े सिस्टमिक सवाल है।
बिल्कुल। और तीसरी एक यूनिवर्सल सीख जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक सार्वभौमिक सीख। अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो द वुमन इन मी एक शब्द की जबरदस्त ताकत के बारे में है। वो शब्द है नहीं। एक दशक से भी ज्यादा समय तक ब्रिटनी को सर्वाइव करने के लिए, सजा से बचने के लिए हाँ कहना सिखाया गया, मजबूर किया गया। उनकी आजादी की असल लड़ाई तब शुरू हुई जब उन्होंने नहीं कहने की हिम्मत जुटाई। काम करने से इनकार, कंट्रोल मानने से इनकार, चुप रहने से इनकार। यह हम सबके लिए एक सबक है। कई बार हमारी खुद की मुक्ति की शुरुआत किसी बड़ी क्रांति से नहीं, बल्कि नहीं कहने की उस शांत लेकिन दृढ़ शक्ति से होती है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना और जरूरत पड़ने पर नहीं कह पाना, यह सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम की तरफ पहला कदम हो सकता है।
आपके लिए एकात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।